समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। यद्यपि समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, परंतु फिर भी इसकी प्रकृति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, जबकि कुछ इसे अध्ययन की मानवीय शाखा समझते हैं। आज भी समाजशास्त्रियों में इस संबंध में मत भिन्नता पाई जाती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, अथवा क्या यह कभी विज्ञान भी बन सकता है। ऑगस्ट काम्ट समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान मानते हैं, और आपने तो इसे विज्ञानों की रानी, क्वीन ऑफ साइंसेस की संज्ञा दी। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों का कहना है कि यह विज्ञान कैसे हो सकता है, जबकि इसके पास कोई प्रयोगशाला नहीं है। जब यह अपनी विषय सामग्री को मापने में समर्थ नहीं है, और जब यह भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि सामाजिक प्रघटनाओं की स्वयं की कुछ ऐसी आंतरिक सीमाएं हैं जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान का दर्जा दिलाने में बाधक है। यह बात अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में भी कही जाती है। इस संबंध में वोटामोर ने लिखा है, सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक सबल तर्क यह दिया गया है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियम से मिलती जुलती कोई चीज पैदा नहीं कर पाए हैं। C.W. Mills ने समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा एक क्राफ्ट मानने का तर्क दिया है। रॉबर्ट बीरस्टीड का कहना है, समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में ही नहीं है, वरन मानवीय मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले कला के विषयों में भी है। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में विवाद पाया जाता है। कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं, और जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं मानते। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है या नहीं, अथवा यह एक विज्ञान है या नहीं, यह जानने से पूर्व विज्ञान किसे कहते हैं जान लेना आवश्यक है। विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइंस। साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर से ही लगाते हैं। इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों या प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते, परंतु यह उनका भ्रम मात्र है। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाएं, तो ऐसे विषय को विज्ञान ही माना जाएगा। विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टुअर्ट चेज ने लिखा है, विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। ग्रीन ने विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया है। कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। विसंज तथा विसंज के अनुसार यह एक पद्धति या उपागम है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। लुंडवर्ग के अनुसार विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है। लैंडिस की मान्यता है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में या समाज शास्त्र में। वर्नार्डे ने विज्ञान की परिभाषा 6 प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में की है, जो इस प्रकार है, परीक्षा, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन तथा अभिविन्यास। इनमें भविष्यवाणी करना व व्यवहार में लाना भी सम्मिलित है। फरफे ने बताया है कि हमें वैज्ञानिक ज्ञान को ऐसे ज्ञान के रूप में परिभाषित करना चाहिए जो एक विशेष मात्रा तक निश्चित, कारणयुक्त एवं सामान्य हो। इस प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। विज्ञानों के उपयुक्त कथनों से स्पष्ट है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान से है। विज्ञान के अर्थ को समझने के पश्चात यहाँ वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड के संबंध में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इस पद्धति के अर्थ के संबंध में लुंडबर्ग ने लिखा है, व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। इस पद्धति को काम में लेते हुए अध्ययनकर्ता को निम्नलिखित चरणों से गुजरना होता है। 1, समस्या का चुनाव। 2, उपकल्पना का निर्माण। 3, अवलोकन करना और उसे लिखना। 4, वर्गीकरण एवं निरूपण। 5, विश्लेषण एवं व्याख्या। 6, सामान्यीकरण। 7, जांच या परीक्षण। 8, भविष्यवाणी। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ताओं को किसी समस्या का चुनाव और उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना होता है। इसके पश्चात उपकल्पना बनाई जाती है और उसके अनुसार तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। तत्पश्चात विषय सामग्री का सूक्ष्म एवं सावधानीपूर्वक अवलोकन किया जाता है और इस तरह प्राप्त तथ्यों को लिखा जाता है। फिर एकत्रित तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और कार्य कारण संबंध ज्ञात किए जाते हैं। इसके बाद सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात वर्गीकृत तथ्यों के प्रतिमान के आधार पर सामान्य नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। फिर सामान्य नियमों का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात एकत्रित तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान अर्थात भविष्यवाणी की जाती है। इस प्रकार जिस किसी विषय की अध्ययन वस्तु एवं वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है, वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। विज्ञान के प्रमुख तत्व या विशेषताएं। विज्ञान के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। 1, अवलोकन। विज्ञान में अवलोकन के तत्व पर प्रकाश डालते हुए गुडे एवं हेट ने लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। यंग ने अवलोकन को नेत्रों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन नाम दिया है। अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटना, विषय या तथ्यों का सूक्ष्म परीक्षण करता है। 2, सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन, वेरिफिकेशन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त तथ्य या निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है। 3, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम, प्राकृतिक प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण वर्ग या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। 4, भविष्यवाणी। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता का होना है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहा जाता है। 5, वैज्ञानिक प्रवृत्ति। उस विज्ञान को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करें। गिलिन और गिलिन के वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए इसकी 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। 1, घटनाओं का निष्पक्ष अध्ययन। 2, धैर्यपूर्वक अध्ययन। 3, कठिन परिश्रम। 4, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। 5, रचनात्मक विचार शक्ति। क्या समाज शास्त्र एक विज्ञान है? इज सोशियोलॉजी ए साइंस? समाज शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है, पक्षपात रहित होकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। समाज शास्त्र को विज्ञान मानने के प्रमुख आधार या कसौटियां निम्नलिखित हैं। 1, समाज शास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। समाज शास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज शास्त्र विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। उदाहरण के रूप में समाज शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने हेतु समाजमिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। नंबर दो, समाज शास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। समाज शास्त्र को विज्ञान मानने का एक अन्य आधार अनुसंधानकर्ताओं द्वारा तथ्यों के संकलन हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करना है। यदि समाज शास्त्री को बाल अपराध अथवा वैश्यावृत्ति की समस्या का अध्ययन करना है या भीड़ व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है तो वह इनसे संबंधित तथ्यों को स्वयं घटनास्थल पर जाकर अवलोकन करके एकत्रित करेगा। नंबर थ्री, समाज शास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर हर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। समाज शास्त्र में भी सही निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। नंबर चार, समाज शास्त्र में क्या है का उल्लेख किया जाता है। यह शास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है अथवा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यह तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। वे जिस रूप में हैं उनका ठीक वैसा ही चित्रण करता है। यह शास्त्र तो क्या है का ही उल्लेख करता है। उदाहरण के रूप में यह संयुक्त परिवार प्रथा या जाति व्यवस्था का प्राप्त तथ्यों के आधार पर ठीक उसी रूप में उल्लेख करता है जिस रूप में वे हैं, न कि यह बताने का प्रयत्न कि वे अच्छी हैं या बुरी। नंबर पाँच, समाज शास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। समाज शास्त्र में घटनाओं, तथ्यों, विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। यह शास्त्र तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सहसंबंध को स्पष्ट करते हैं। नंबर छः, समाज शास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाज शास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही समाज शास्त्रीय सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। नंबर सात, समाज शास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। समाज शास्त्र भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। उदाहरण के रूप में तथ्यों के आधार पर प्राप्त इस निष्कर्ष की कि टूटे परिवार बाल अपराध के लिए काफी सीमा तक उत्तरदायी है, अलग अलग स्थानों पर परीक्षा और पुनर्परीक्षा की जा सकती है। नंबर आठ, समाज शास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं। समाज शास्त्रीय सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां समान रहें तो समाज शास्त्रीय सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। उदाहरण के रूप में यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया गया है कि पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन पर आधारित है। नंबर नौ, समाज शास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। समाज शास्त्र इस कारण भी विज्ञान माना जाता है कि यह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाज शास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी तथा परिवारों के कौन से प्रकार विशेष रूप से पाए जाएंगे। उपयुक्त सभी आधारों पर यह कहा जा सकता है कि समाज शास्त्र एक विज्ञान है। इसमें विज्ञान के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियाँ। कुछ विचारक समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं, इसके वैज्ञानिक प्रकृति पर अग्रांकित आपत्तियाँ उठाते हैं। नंबर एक, वैषयिकता, तटस्थता का अभाव। वैषयिकता या तटस्थता का अर्थ पक्षपात रहित अध्ययन से है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध ये एक तर्क यह दिया जाता है कि यह प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी अध्ययन वस्तु का वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता। इसका कारण यह दिया जाता है कि समाजशास्त्र जिस समाज, जाति, परिवार, धर्म, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक मूल्यों आदि का अध्ययन करता है, वह स्वयं भी इनमें भागीदार होता है, इनका एक अंग होता है। अतः इन सबके वस्तुनिष्ठ अध्ययन में उसकी स्वयं की रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह तथा व्यक्तिगत विचार बाधक हैं। इसी कारण समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं माना जा सकता। मूल्यांकन, इतना सही है कि जितनी वैषयिकता या तटस्थता प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती है उतनी समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समाजशास्त्र में वैषयिकता का अभाव है। आज समाजशास्त्र ने भी ऐसी पद्धतियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से व्यक्तिगत पक्षपात को अध्ययन में बाधक बनने से रोका जाता है। नंबर दो, सामाजिक घटनाओं की जटिलता। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह उठाई जाती है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है जो कि काफ़ी जटिल है। एक ही सामाजिक प्रघटना अनेक कारणों से घटित होती है और उन सभी कारणों और उनमें से प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करना बहुत कठिन है। सामाजिक प्रघटनाओं की जटिल प्रकृति के संबंध में लुंडबर्ग ने लिखा है, मानव समूह व्यवहार से संबंधित एक वास्तविक विज्ञान होने के लिए संभवतः एक सबसे बड़ी बाधा इसकी अध्ययन वस्तु की जटिलता है। सामाजिक प्रघटनाओं की जटिलता और परिवर्तनशीलता के कारण ही कई विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं। मूल्यांकन, जटिलता किसी भी अध्ययन वस्तु के विज्ञान कहलाने में बाधक नहीं है यदि अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए अध्ययन करें। कोई भी घटना या वस्तु उसी समय तक जटिल मालूम पड़ती है जब तक कि उसके संबंध में पूर्ण जानकारी या ज्ञान नहीं हो। समाजशास्त्री ज्ञान के विस्तार और इसकी अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों के विकास के साथ साथ सामाजिक घटनाओं की जटिलता भी अपने आप दूर होती जा रही है। नंबर तीन, सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, अर्थात ये बदलती रहती है, अतः इनके अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। मूल्यांकन, यदि यह बात सही है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, परंतु साथ ही यह भी सही है कि भौतिक और प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तनों के उपरांत भी जब उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में ऐसा नहीं किया जा सके। साथ ही यह किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। परिवर्तित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता। नंबर चार, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता, एक रूपता या समानता का अभाव पाया जाता है तथा सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयां पूर्णतः एक दूसरे के समान नहीं होती। प्रत्येक स्थान पर सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए होती हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक घटनाओं में सार्वभौमिकता पाई जाती है। मूल्यांकन, एक रूपता के अभाव के आधार पर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन नहीं किए जा सकने की बात अपने आप में तर्कहीन है। समाज में समानताएं और विभिन्नताएं दोनों ही पाई जाती हैं, अतः यह कहना गलत है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता और एकरूपता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। नंबर 5, सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई। समाज शास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वालों का कहना है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त है, गुणात्मक है, अतः इन्हें नापा तोला नहीं जा सकता। इसके विपरीत प्राकृतिक विज्ञानों में नाप तोल संभव है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में निकाले गए अधिकतर निष्कर्ष अनुमान एवं अवलोकन पर ही आधारित होते हैं, अतः उनमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। मूल्यांकन, समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध उपयुक्त आरोप सही नहीं है। सर्वप्रथम तो विज्ञान के लिए माप अत्यंत आवश्यक तत्व नहीं है, केवल एक सहायक तत्व है। फिर समाज शास्त्र ने भी अपनी ऐसी प्रविधियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से सामाजिक घटनाओं की माप काफी सीमा तक संभव है। समाज शास्त्र में भी सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नंबर 6, कार्य कारण संबंध का अभाव। वैज्ञानिक सदैव यह जानने में रुचि रखते हैं कि कोई वस्तु ऐसी क्यों है, अर्थात वे घटना या कार्य के कारण जानने का प्रयत्न करते हैं। समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्ति यह उठाई जाती है इसमें कार्य कारण संबंध का अभाव पाया जाता है। स्वयं अगस्त कांटे ने समाज शास्त्र में प्रकटन के अंतरंग कारणों की खोज को अस्वीकार किया है। मूल्यांकन, उपयुक्त आरोप सही नहीं है। आज समाज शास्त्र कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने की स्थिति में है। मैकाइवर तथा दुर्खिम आदि ने समाज शास्त्र में कार्य कारण संबंध की खोज पर विशेष जोर दिया है। दुर्खिम का तो कहना है कि प्रत्येक कार्य का सदैव ही एक संबंधित कारण होता है। नंबर 7, समाज शास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक प्रमुख आरोप यह लगाया जाता है कि इसके पास भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें नियंत्रित दशाओं में अध्ययन किया जा सके। साथ ही यह भी कहा जाता है कि प्रयोगशाला के अभाव में प्राप्त निष्कर्षों को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि समाज शास्त्र द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अनुमानों पर आधारित होते हैं और इसी कारण समाज शास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। मूल्यांकन, यह बात सही है कि अन्य भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र के पास कोई बंद कमरे वाली प्रयोगशाला नहीं है। इसका यह अर्थ तो नहीं लगाया जा सकता कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र में अवलोकन विधि को काम में लेते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही समाजशास्त्र की विषय सामग्री इस प्रकार की है कि उसे बंद कमरे या प्रयोगशाला में रख कर अध्ययन करना संभव नहीं है। किसी सन्यासी, डाकू और अपराधी का अध्ययन तो उसके चारों ओर की स्वाभाविक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, न कि किसी बंद कमरे में। यह कहा जा सकता है कि समाज शास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज ही है, अतः समाज शास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। नंबर 8, समाज शास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति यह उठाई जाती है कि यह भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। इसके नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं है जिन्हें सभी समाजों और कालों में लागू किया जा सके। इसके विपरीत प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों के नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं। मूल्यांकन, समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए उपयुक्त आरोप निराधार हैं। भविष्यवाणी करने की सीमित योग्यता न केवल समाज शास्त्र में बल्कि प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों तक में पाई जाती है। उन विज्ञानों के द्वारा निकाले गए अनेक निष्कर्ष सत्य नहीं होते, जैसे भविष्यवाणियां गलत प्रमाणित होती हैं। इस संबंध में चेस्टर अलेक्जेंडर ने लिखा है, पहला, ऋतु विज्ञान के विशेषज्ञ 5 दिन पहले ही मौसम के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। दूसरा, अत्यधिक कुशल डॉक्टर भी किसी बीमारी के संबंध में यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वास्तव में कौन सी बीमारी है। तीसरा, प्राणी शास्त्री शीघ्रातिशीघ्र यह नहीं बता सकते हैं कि कौन सा खरगोश 9 अंकुरित मटर के पौधे के अंकुर को खाएगा। चौथा, वनस्पति शास्त्री या भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कौन सा बीज पहले अंकुरित होगा। पांचवा, भूगर्भ शास्त्री यह नहीं बता सकते कि आगामी शीतकाल में कौन सी रेल की पटरी टूटेगी। पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने की सीमित क्षमता के बावजूद भी जब उपरोक्त सभी विषयों को विज्ञान माना जा सकता है तो समाज शास्त्र को विज्ञान मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। समाज शास्त्र एक विज्ञान है और उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इतना अवश्य है कि समाज शास्त्र उतना निश्चित विज्ञान नहीं है जितने निश्चित प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान हैं। इसी कारण समाज शास्त्र को व्यावहारिक विज्ञान नहीं मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है।